राव। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 2 अगस्त 1992 को प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री राम द्वारा मथानिया में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
और पदार्थों का संग्रह करने के लिए ये बुद्धि वास्तव में पतन करने वाली है। सुख भोग लू और धन संग्रह कर लू, पदार्थों का संग्रह कर लू, विद्या का भी संग्रह कर लू, बढ़ाई की हो जाए जिससे मकान आदि, ये है चीज। तो बाहर का संग्रह है और भीतर में विद्या आदि संग्रह हो जाए, बड़ा विद्वान बन जाऊं। तो ये संग्रह की इच्छा एक तो, और एक सुख भोग की इच्छा, ये दो इच्छाएं पतन करने वाली है। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तयाप्रदाम, इनसे बुद्धि अभृत हो जाती है। व्यवसाय बुद्धि समाधुर न विधिये थी, परमात्मा में उनकी बुद्धि नहीं होती, परमात्मा की ही प्राप्ति करना है ऐसा वे निश्चय कर ही नहीं सकते। भोग और ऐश्वर्यों में लगे रहते हैं, रुपया कमाना और सुख भोगना, ये दो है। दो में एक चीज हो जाए, किसी के संग्रह करने की मुख्यता होती है, किसी के भोग भोगने की मुख्यता होती है, और किसी के दोनों ही होती है, तो तीनों का भी उद्धार नहीं होता, पतन होता है। इसमें भेदवाद होता आया तो भगवान कहते हैं वेदों में भी ज्यादा सकाम भाव का ही वर्णन है। इस वास्ते तीन गुणों को वर्णन करने वाले वेद है, तू तीन गुणों से रहित हो जाए। निर्द्वंद नित्य सत्य में स्थित रहने वाला योग समझने वाला परमात्मा के परायण हो जाए। क्या होगा महाराज कि जैसे वर्षा आ जाए और जगह जगह जल भर जाए तो उसमें हाथ धोए तो उसमें जल गुजर जाता है, मिट्टी मिल जाती है, घुल जाती है। किस जगह जाकर के दातुन को नाली करे उसमें तो मिट्टी घुल जाती है। किसी ने स्नान करें तो फिर कपड़ा धोने के लिए साफ जल नहीं रहता, परंतु वो मीठा जल का समुद्र भरा हुआ आकाश, उसमें चाहे आप स्नान करो, जल पियो, पैर धो, दातुन खुला करो, तो उस एक में सब काम हो जाते हैं। ऐसे ही जो निष्काम भाव है, कामना का त्याग करके दूसरों के इसके लिए काम करता है, इसमें सब काम ठीक हो जाता है। यज्ञ दान के लिए दान करे, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, बेटे की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, तो एक एक काम होता है, वो भी बढ़िया नहीं होता, परंतु एक ही कल्याण की बात हो तो उसमें सब काम हो जाते हैं, सांसारिक पदार्थ इसमें आ जाते हैं, सभी हो जाता है। इस वास्ते कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं, फल सकते निबद्ध से। इस वास्ते कर्म के फल का हेतु तो मत बन, और कर्म करने से भी उपराम नहीं होना चाहिए। योगस्था को कर्मानी, सब काम करो योग में स्थित होकर करो। जैसे अभी बताया संपूर्ण कर्मों में और उपासना में और ज्ञान में योग सार चीज है। योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति का त्याग करके, फल का त्याग करके, इसको बुद्धि योग का, कर्म योग का है, योग का है, बुद्धि का है, ये नाम आए। इस वास्ते तू कर्म जो है दूर से ही हो रहे, जो सकाम भाव से किए जाए वो दूर से ही निकृष्ट है। बुद्धि की शरण लो, कृपणा फल हेतु, फल के हेतु बनते हैं वो कृपण है। बुद्धि योग तो इस समता की बुद्धि हो जाए मन में, ऐसी धारणा हो जाए तो वो शुक्र तो दुख, पाप और पुण्य दोनों को छोड़ देता है। पाप और पुण्य का जो सुख और दुख होता है उन सुख दुख से ऊंचा उठ जाता है बुद्धि युक्त पुरुष। यहाँ ही जीते जीते ही इस वजह से योगा योग की तैयारी करो। योगा कर्म सुकौशलम, कर्म में योग ही कुशलता है और कर्म में कुछ नहीं है। वे योग क्या होते हैं? कर्म सम बुद्धि युक्ता ही फलन त्यक्ता मनीष न जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदन गच्छन्ति नामयम्। कर्म जन्य बंधन का त्याग करके और वे मनीषी फल का त्याग करके अनामय निर्विकार पद परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अब कैसे जो कब होगी बात, तो यदा ते मोह कर्म बुद्धि विरति, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को उतर जाएगी, मोह से ऊंची उठ जाएगी। संसार में जो मोह है ना, कुटुंब का मोह है, धन का मोह है, मान का मोह है, शरीर का मोह है, ये मोह में बली हुई बुद्धि तेरी ऊंची उठ जाएगी। तब तो सुनने और नहीं सुनने की सबसे वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो ये संसार का एक मोह कलिल है। एक बात और सुनो, अगाड़ी 53वें श्लोक में बताते हैं, श्रुति प्रतिपन्ना से शास्त्रों में सांख्य योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, लय योग है, हठ योग है, राज योग है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, न्याय है, वैशिष्टिक है, ऐसे शास्त्र कई मत है। ये भी एक बड़ा ज्ञान है। जैसे मोह कलिल है, मोह भी दलदल है, कलिल दलदल होता है, वो ऐसा होता है कायदा होता है, कायदे में पैर रखा जाए फिर जो वो चेष्टा करता है उठाने की हिलता है तो जो फंसते ही चला जाता है, निकलता नहीं, ऐसा होता है थोथा पोला नीचे से कायदा, उसको दलदल कहते हैं। उस दलदल में फंसा हुआ निकलना बड़ा मुश्किल होता है, क्यों जिधर लगा उधर चल जाए, हाथ से लगा हाथ में फंस जाए, पाओ हिला गए उठाए जाओ तो फिर धस जाए। ऐसे मोह संसार का ये आदमी को फंसाता है और ऐसे ही शास्त्र का भी मोह हो जाता है, उसमें पक्षपात हो जाता है, वो भी फंस जाता है, वो बुद्धि स्थिर नहीं होती। ये दोनों का मोह त्याग करके ठीक से रहता है योग में, तब उसका कल्याण होता है। इसमें अर्जुन ने पूछा है, अगर या भगवान इसका उत्तर देंगे। नारायण 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 नारायण। अब आज प्रश्न आए हैं उनका खास, दोनों ही पुरुषों का तात्पर्य है कि हम संसार में कैसे बर्ताव करें, गृहस्थ में बर्ताव कैसे करें। तो इस विषय में कुछ बातें सुनाता हूँ। खूब ध्यान देकर आप लोग सुने, तो सुनाने से पहले एक कहानी सुना देता हूँ, उस कहानी से समझ में आ जाएगी बात। दृष्टांत दिया जाए, कहानी दी जाए तो बात समझ में सुगमता से आती है। एक सेठ के 7 बेटा थे, बड़ा धन था पास में और आपस में भी बड़ा स्नेह था, लोगों में भी बड़ी प्रतिष्ठा थी, राज्य आदि में भी उस सेठ की मान्यता थी, और लोग की न्यास आदि में भी सब उसको आदर दृष्टि देखते थे। सात बेटों का विवाह कर दिया तो छह का तो पहले विवाह कर दिया है, अब सातवें बेटे का विवाह हुआ। विवाह के बाद मुकुला कहते हैं, दुरागमन कहते हैं, दूरी फिर आती है ना, बीवी पहले आती है विवाह करके वो चली जाती है, दोबारा जाते हैं, उसको गौना भी कहते हैं, मुकुलावा कहते हैं, दुरागमन कहते हैं। वो लड़की जब आई घर पर तो उसने देखा तो उसके जेठानी है देलन को यही नहीं, देलन तो वही है सबकी, उसके तो सब जेठानी नंदा है सास है। तो वो देखती है वहां बर्ताव तो उसको आश्चर्य आता है। उसके पिता ने समझाया था कि बेटा दो बात का ख्याल रखना, ससुराल जाओ तो दो बात का ख्याल रखना, एक तो काम धंधा तो अपने करना, वो तो छीना जब्त के नहीं, वो कोई घर तो मेरे को दोगे, मैं करूंगी ये मैं करूंगी, ऐसे काम धंधा तो अपने करना, और चीज वस्तु आराम आदर सत्कार दूसरों को देना, ये दो काम करने से तुम्हारा बर्ताव बड़ा अच्छा हो जाएगा, श्रेष्ठ होगा, तेरी भी महिमा होगी हमारी भी महिमा होगी। माँ बाप कहते और ये नहीं करोगी, स्वार्थ करोगी और काम नहीं करोगी, लड़ाई करोगी आपस में, काम दूसरों से करवाओ, चीज वस्तु आप ले, ऐसा स्वार्थकार अभिमान का बर्ताव करोगी तो तुम्हारे कोई भला नहीं कहेंगे और हमारे को भी बुरा कहेंगे लोग। मैंने सुना था ना भाई कि वो लड़की अगर ठीक काम नहीं करती तो लड़की को दोष नहीं देते, ये कहती है माँ रांड ने सिखाया वो नहीं, तो वो माँ रांड माँ को देता है। ये ढोल गंवार सूद्र पशु नारी किसी ने पूछा था, उस पर मैंने कहा था कि ढोल गंवार सूद्र पशु और नारी इनका दोष नहीं होता है, दोष इनको शिक्षा देने वाला बजाने वाला उनका दोष होता है, इनका दोष होता ही नहीं। तो स्त्री जाति का दोष नहीं है, इसकी घर में रह संघ कैसा हुआ कैसा सिखाया है उनका दोष होता है, इसमें मैंने ये बात कही थी। तो लड़की वहां आई तो देखती है आपस में छह जेठानियां, एक सास एक आप आसनी हो गई, तो वे सब रसोई बनाती है तो बारी बारी रसोई बनाती है, तो बारी बारी रसोई बना सेठ में, सेठ के एक बड़े धर्म की निष्ठा थी, वो रसोई आदि के लिए नौकरों को नहीं रखते थे, इतने में बैठे तो घर का खास अपने कुटुंब का पालन करने का काम तो सिंहों को कर लेना चाहिए, इसके लिए नौकरी की क्या जरूरत है। इस वजह से उनकी छह बारियां बंदी हुई थी, तो तीन दिन से बारी आती, किसी मरीज में कोई स्त्री कहती है भाई सिर दर्द हो रहा स्वास्थ्य ठीक नहीं तुम करो, तो वो लड़ जाती है बाकी तुम्हारी बारी में हम क्यों करें, हमारी बारी में तुम करती है क्या, ऐसे खटपट देखी, खटपट देखी तो उस छोकरी को बड़ा आश्चर्य आया कि पिताजी ने कहा कि काम धंधा लेना चाहिए और ये तो एक एक छोड़ना चाहते हैं, क्या बात है। तो एक दिन विचार किया उसने कि भाई ये अपने तो पिताजी ने कहा वो काम करना है, सोच स्नान आदि कर कपड़े साफ पहन करके और रसोई में जा बैठी, सबसे पहले रसोई बनाने लगी तो जेठानी ने कहा ये तू आज रसोई क्यों बनाती है बहू, रसोई तो बनाने हमारा काम है हम करेंगे। तो वो बोलती है मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या गुनाह कर दिया जो मेरे को रसोई नहीं बना देने थी। ये बात मुझे समझ में नहीं आती, रसोई बनाने नहीं देते हमारे को तो मेरी क्या गलती होगी, क्या कसूर हुआ, क्या अपराध हो गया तो मेरे को नहीं बनाने दो, समझे नहीं अपराध की क्या बात है, हम तो तुमको आराम देते हैं, मेरा आराम तो रसोई बनाने में ही है। आज रसोई में बनाऊंगी। तो उसने देखा अच्छा बनाने दो, रसोई बनाई। जब सब भोजन करने को आए, सासू भी आई, पुरुष भी आए, सासू के बेटा भी आए, सब भोजन कर चले गए। सासू ने देखा कि ये छोटी बहू अभी आई है नहीं है, और इसको रसोई में लगा दिया। तो जब मैं वो सासू गई बहू के कमरे में जाकर के, अब देखो बेटा तू क्यों आशा आई, रसोई करने वाले की इच्छा है जेठानी, कोई कमी थोड़ी है यहाँ, नहीं तो नौकर भी रह जाएंगे। तू क्यों करती है, तू माँ की पगा पड़ी, माँ जी बताओ मेरा क्या कसूर है। अरे कसूर क्या है, रसोई बनाने नहीं, तेरे को आराम लेना चाहिए, तो नहीं आई है अपने घर से, तो तेरे को माँ भी याद आवेगी, तो यहाँ भी आराम मिलना चाहिए तेरे को। कहते माँ जी आराम का क्या फायदा, तू रसोई रसोई देना है क्या फायदा। तो वह बोली और ध्यान देना, अब छोटी की बहू बोलती उसका ख्याल रखना, जो पूछते वो सुधार कैसे हो गृहस्थ का। वो कहती है कि आप ब्राह्मण भोजन क्यों देते हैं, आप साधुओं को भिक्षा क्यों देते हैं, घर पर कोई मांगना उसको रोटी क्यों देते हैं। भावली गृहस्थ का धर्म है, भोजन कराने से पुण्य होता है, साधुओं को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को कराओ, भूखे भिखारियों को अन्न दो, कोई भी अतिथि आ जाए उसका सत्कार करो, ये गृहस्थ का खास धर्म है, इसमें पुण्य होता है। तो माँ जी जब भोजन कराने से पुण्य होता है, तो भोजन रसोई बना करके सबको भोजन कराने का पाप होगा, इसका बड़ा भारी पुण्य है, ये इनसे मेरे को वंचित क्यों रखो, मैं तो रसोई बना लूंगी। सासू देखा लड़की बड़ी विचित्र है, भाई बोलो अगर दूसरों को भोजन कराने से दोष लगता है तो आप पुण्य क्यों करती हो। कहते तेरे जेठानियां बहुत है कि माँ जी जेठानियां काम करेगी तो उनका पुण्य जेठानियों को होगा, मेरे क्या फायदा, मेरे फायदा तब हो जाए मैं रसोई करूं और सब भोजन करे अच्छी तरह से। सासु चुप हो गई, बात तो ये बढ़िया कहती है। हाँ फिर बेटा बोलो कि बोलू क्या, जितना काम धंधा सेवा ज्यादा करता है उसको भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, और दूसरों से सेवा करवाता है उसको जल्दी भगवान नहीं मिलते, उनका अंतकरण मैला हो जाता है, हुक्म चलाता है तो अभिमान हो जाता है, और आराम में बड़ा कर शरीर मोटा बनाते तो उठाने वाला रोज बेचारे के मुर्दों भारी जाता है, फायदा क्या होगा। और काम करे तो स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और आपस में प्रेम भी रहता है। ऐसी बातें मारे उसने कही, सासू के जच की बात कि बात ये ठीक कहती है। फिर दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन दादा जी वो तो रसोई बनाऊंगी मैं छोटी हूँ बालक हूँ, मेरे पर आप कृपा करो, आप सब बड़े ही बड़े माही तो पूजनी हो, मेरे पर कृपा करो। अब ऐसे रसोई बनाओ प्रेम से। दूसरे दिन मेरे सासू ने कहा कि देखो तुम रसोई बनाओ, एक ही लिया छोटी है इसको रोजी नहीं क्यों दे। तो जेठाने ने वो सासू ने उसको उठा दिया, उसको बैठा दिया, वो रसोई बनाई। अब उसने देखा कि रसोई रोजी ने तो नहीं बनाने देते। तो घर में एक घट्टी चक्की पड़ी थी, घट्टी उस घट्टी में जल्दी उठी, उन्होंने पति से कह दिया कि भाई गेहूं ला दो, बोरा ला कर रख दिया, साफ करके उनको बस पीस करके अपनी बारी आई। दूसरे में बैठ जा, आज तुम्हारी बारी है, सब चार दिनों से बारी आवे तो बारी है, आज तो मैं करूंगी। अब हाथ का पीसा हुआ आटा तुरंत का, और बड़े बड़े प्रेम से प्रेम बने रसोई बढ़िया बनी। देखो रसोई बनानी पड़ती है प्रेम से, उत्साह से बनाया जाए तो रसोई बढ़िया बनती है, और दुख पाकर रसोई बनाए तो रसोई बढ़िया नहीं बनती। तो उसने कहा हाथ का आटा था, यानी जो कच्ची में आता है वो हीर जल जाता है, बोरे का बुरा आटा पड़ा रहता है, खराब पुराना होता है। लोग कहते भी आज तो फुलका भी बहुत बढ़िया साग भी स्वादिष्ट, किसने बनाया? कि छोट की बहू ने बनाया। सब बड़े राजी हुए, बड़े प्रसन्न हुए। अब वो बारिया है, सास में कहते हैं भी ऐसे नहीं, बारिया है बनाओ, तुम बारिया हो तुम बनाओ। तो फिर उसने आटा रोजाना पीस कर तैयार कर दे। उसने देखा रसोई तो रोजाना नहीं बना देते, पर आटा तो रोजाना मेरा लगेगा ही, इसमें हमारा उस पुण्य हो ही जाएगा। अब वो आटा उसी का ही चले, तो सब कहते भी आजकल तो फुलके भी बड़े जायकेदार बड़ा बढ़िया बनते हैं, कि मेरा तुरुस का आटा है। अब उनके पिछले सास ने देखा कि सुबह जल्दी वो तो उठ करके चक्की पीस रही है, क्या कि बहन तुम क्या कर रही हो, तुम समझते नहीं, हमारे पैसों की कमी नहीं है, बहुत पैसा है, कल चक्की पीस कर आ जाएगा, तू क्यों मेहनत करती है। तो माँ जी ने कहा, माँ जी देखो चक्की पीसने में परिश्रम होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और रोग वो पसीने और निकल जाता है, और कोई रसोई बनाओ आटा तो मेरा ही रहेगा। तो आप दान पुण्य करते हो तो सबके भोजन कराने का पुण्य होता है, उसमें आटा तो मेरा ही चलेगा, इसमें मेरा पुण्य होगा। भोजन कराने में कितनी तृप्ति होती है। अन्नदानम महादानम विद्यादानम तो अन्नदान वो महादान है, अन्नंग प्राणियाम प्राणा, प्राणियों का प्राण है अन्न, इस वास्ते अन्न मैं पीसूंगी। सास बड़ी चक्र आएगी। अब वो रजन आता हो पीस कर तैयार कर दे, रसोई कोई बनावे। दूसरे दिन सास जाकर बैठ चक्की पर, मैं पीसूंगी अब तो आटा में, कि माँ जी आप बूढ़ा क्या पैसा, कि बूढ़े को कल्याण नहीं चाहिए, उद्धार नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए बूढ़ों को। अरे बूढ़ों को तो पहले चाहिए, मरना है जल्दी, इस वास्ते आप मैं पीसूंगी। कोई सास और छोटी को उधर उन्हें पूछा बात क्या है, तो महाराज जेठानिया ने पूछा तो कहा कि तुम समझते नहीं हो, तुम्हारा पुण्य तुम्हारा धर्म सब एक लूट ले गया, आ छोटी सोचने का बना बड़ी होशियार है, सबका पुण्य लूटती है, सबको भोजन कराती है तो उसका पुण्य होता है, ब्राह्मणों को भोजन देते हैं, गरीबों को भोजन देते हैं, जाति वालों को भोजन देते हैं, तो भोजन देने का पुण्य होता है। तो ये तो कहते हैं भोजन देने का बड़ा पुण्य, तो मैं तो रसोई बनाऊंगी, अरे भाई यार रसोई बनाती है, आटा बिना पीसती है, तुम्हारे को ठग रही है, तुम मेरी समझती हो नहीं, तो हम बनाएंगे। वो कहते हम बनाएंगे। ऐसे लड़ाई हुई, जो पहले जा बैठे, जैसे बार बार क्या होता है, पहले आवे जैसे गोरी का ब्याह है, पहली बार बैठ जा जो ठीक है, क्या करे। तो बेचारे तो लड़ाई होने लगी, तो शेर ने कहा तुम लड़ो मत, अपने पंचायत में हो, क्या पंचायत के भारी है, भारी बांध दो सबकी। अब भारी बांधी, तू कर मैं तो छह बारी हुई, मैं करूं मैं आठ बारी हुई, तो मैं करूं काम कम हो जाता है, आदमी ज्यादा हो जाता है, तू कर करने के वजह आदमी तो कम हो जाता है, काम ज्यादा हो जाता है। अब मैं करूं होने में आठ बारी पड़ी, छोट की बहू की, एक सास की और छह जेठानियों की, तो काम थोड़ा होता है, इसलिए वो करने लगी। अब महाराज बारी बंद गई, आटा पीसने की बारी है, जो सासू पीसने लगी तो बुआ कहते तो हमारा काला मुंडा करोगी, इतनी में बुआ बैठी और माजी सासू पीसे, सासू पीसे माजी पीसे आटा, वो में लड़ाई हो गई। अब चक्की एक ही ठहरी, तो उन्होंने जेठानिया ने अपने अपने पति से कहा कि एक एक चक्की ला दो हमारे घर में, सब हम अपने कमरे में आटा पीसेंगे। कैसी अच्छी बात है, अब मेरा सब आधा दो ढाई सौ से पूछे तो कितना हो जाए, आठ ढाई बीस आदमी आटा हो जाए, अब क्या करें इतने आटे का। तो कह रहे इतना आटा करेगा अगर में लगता नहीं तो आटा बेचो साहब, हम क्या करें, हम तो अपना कल्याण करेंगे। छोरी ने समझा के दिया तो बात गई। दूसरे दिन जल्दी उठी, घर में था कुआ, कुएं पानी सींच करके नौकर आता जा भर देता सभी, जल्दी उठ करके और जाकर स्नान कर बर्तन मान कर बर्तन सब आया खेस कर सब जल भर दिया। नौकर आया तो पैंडा भरा हुआ सभी, सेठारे बैठा कैसा है, कहते क्या करूंगे, जल भरो, जल तो भरा हुआ है, सब भंड भरे हुए पड़ना खूब तरांतर भरा हुआ। पूछेगी क्या बात है, किसने भर दिया, तो वह सास गई बहू के कमरे में कि बेटा तेने किया, देखो माँ जी आपको आपको कोई बात कहनी है वो तो गांव में हिला मारना है, आप समझे कह देती हो, मेरा तो काम चला जाए सभी, आप कृपा करो कहो मत। ते भाई बेटी तू यूं क्यों करे, जब बन नौकर रहता है वो तो नौकर है, अपने के पैसों की कमी नहीं है, तू क्यों करे ये बात, तू जल क्यों भरती है। कि देखो माँ जी आपकी खटती बात पछती नहीं आपके, आप कह देती हो कि तू बता तो सही कि रोटी एक बार खावे, दो बार खावे, तीन बार पानी कितनी बार पिए, और हाथ धो पैर धो खुला करो, पानी कितना काम आवे, तो पानी का जितना पुण्य उतना अन्न का भी नहीं है, इस बात वो तो भर में रखू, रसोई कोई बनावे, आटा मेरा रहे, अब आटा पीछे सभी, पर आटा ही मेरा गया तो ये तो काम मैं करूंगी, पानी भरने का तो। अब महाराज जल्दी उठी, जो साथ जाकर के बेचारी बूढ़ी खेच लेगी पानी, अब उस बउआ आएगी, माँ जी कहीं गिर पड़ोगा चोट लग जाएगी तो हमारा काला मुंह हो जाएगा कि माँ जी बूढ़ा पानी भरे है, आप मत भरो, आप क्यों पानी भरोगे भाई, ये छोट की बहू बड़ी होशियार है, सबका पुण्य लूट लेगी अकेली, सब काम कर करके अपना काम करेगी, अवसर नहीं होगी मैं भरू वो मैं भरवाऊ, ऐसे पानी भरे जो पहले जाए वो पानी भर जाए अपना। नौकर बैठा रहे तो सेठ ने कहा कि नौकर तेरे पानी भरने पानी से भरा रहता ऐसा मैं क्या करूं, तो इसको छुट्टी दे दो, ये छुट्टी देने की सेठ ने कही तो वो छोट की बहू गई सासू की कमरे में जाकर, बाजी मेरी एक प्रार्थना है इसको छुट्टी मत दो, दूसरे काम में लगा दो, ये गृहस्थ का काम कैसे चलेगा, नौकरी उसको जरूर रखो, इनको नौकरी नहीं करना, नौकरी सुधारनी नहीं, इसके बालकों का पालन पोषण कैसे होगा। तो छोट की बहू ने कह दिया सर, तो उसने अपने पति से कहा सेठानी ने कि देखो छोट की बहू कहती है कि उसको ऐसे छुट्टी मत दो, काम दूसरे लगा दो, आप काम तो बहुत से होगा। तो भाई छोट की बहू तो बहुत होशियार है, अब छोट की बहू का आदर हो गया सब बहुओं से ज्यादा, ये कहती है और करती है दोनों काम करती है, बड़ी अच्छी है, अब सब काम होने लगा, भोजन कर सब काम ठीक हो गया, और पानी भी बारी आया भर ले, रसोई भी बारी आई कर ले, कोई काम नहीं रहा। तो एक दिन जल्दी उठ करके झाड़ू लेकर के झाड़ू दिया, अपने कमरे में दिया ही, और सब कमरों के आगे बारे बारे सब घर में झाड़ू दे दिया। उसने पूछा झाड़ू क्यों क्यों देती है, कहते महाराज वनवास में गए थे रामचंद्र जी महाराज, बड़े बड़े ऋषियों को छोड़ करके सबरी के घर गए, क्यों गए, सबरी सब ऋषि मुनियों की वह कुटिया ही, उनके सामने जितनी डगर थी उन्हें बगराजते सब साफ कर देती, झाड़ू देती, तो राम जी सबसे पहले सबरी से मिले, मोटा मोटा मुनि ने आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए से, तो कभी ये बात है, इस वास्ते भगवान जल्दी मिले उसको, ऐसी बात है। तो अब सासू करने लगी, भगवान ने देखा पूछने की जरूरत नहीं, छोट की बहू करे सासू करे वो काम करना है, अब हमारा ये तो काम सब हो गया, बहू ने सब जब क्या करें। तो एक काम धंधा करने वाली स्त्री आती थी जो बर्तन से मांज कर साफ कर देती, एक दिन वो जा बैठी जो सास राख का कूड़ा भर लेकर उठ बैठी, ये गई जो उनसे पहले ही बैठ गई वहां, जो बर्तन कोई भोजन करे जो आवे बर्तन मांजे सब बर्तन मांज साफ करे। सासू ने कहा बहू क्या कर रही हो तुम समझते हो पैसा पैसा तो बहुत कम लगेगा, इतना खराब हो जाएगा तुम्हारा कपड़ा, और ये गहने घिस जाएंगे गहने, इसमें नुकसान होगा, और वो पास आप साफ पानी पड़ देती है, जल्द कर देती है, मार देती है, काम हो जाता है, थोड़ा पैसा देते हैं, थोड़ी रोटी दे देते हैं, काम सब हो जाता है इतने में, तू क्यों मांझे। बोली नहीं, कमरे में जाकर पूछा, बता तो सही कि माँ जी काम धंधे में सेवा में जितनी छोटी सेवा होती है उतना बड़ा ऊंचा महात्म होता है। आपने सुना नहीं, पांडवों ने जिग किया तो जुटन भगवान कृष्ण ने उठाई पत्तवा उठाई, कि छोटा काम होता तो भगवान कृष्ण करते है क्या? ये छोटा नहीं है, बड़ा काम है जुटन उठाने का। सासुर के बात तो ठीक कैसी है, सेवा तो जितनी छोटी है उतनी बड़ी है वो सेवा। तो दूसरे दिन महाराज लोग सासुरी बैठ गई, अब कोई भोजन करे खड़ी रहे सर थाली से गुड़िया सब मांझने लग जाए। जेठानी हो गई देख रही है बात बहुत बढ़िया है, सुनाई देखो कितनी होशियार है छोटी की बहू जो सब काम करती है। अब एक भोजन कर रहा है भाई, भोजन कर रहा है तो मेरे बहुत जेठानी है जो वहां खड़ी रह गई, कहीं थाली से मैं मांझूंगी। इतने में माजी आ गया, कैसे क्या करती हो तुम, थाली से मैं मांझूंगी। देखो माजी, ये मेरे पति है, इनकी जूठ मानने का मेरे को अधिकार है, ये तो मैं ही मानूंगी। ला तेरा पति है, मेरा बेटा पहली है, पति तेरा पीछे, मैं बेटी के साथ मैं मान लूंगी, तू कौन करने वाली से। ऐसे लड़ाई होने लगी। अब बड़ी अब मानने के लिए गई, इसको क्या करो, इसको जो काम करवा लो, इसको छुट्टी मत देना बेचारी को। छोटी को भी कह दिया। अब महाराज उन्होंने लड़ाई होने लगी। अब जो काम वो बहू करे सब जेठाने वही करे, सासू भी वही करे। पहले तो काम धंधा ज्यादा था, आदमी थे कम, अब सब आठ स्त्रियां घर में काम करे, अब नौकर की जरूरत नहीं रही, सब घर में काम अच्छी तरह से होने लगा। अरे काम मैं करूं काम हो जाता है हल्का, अरे तू कर काम हो जाता है भारी। इस तरह से उसने काम किया अच्छी तरह से, अब घर में बड़ा ऐसा प्रेम रहा। तो जहाँ संपता संपत्ति नाना, जहाँ कलह तहाँ विपत्ति विधाना। जिस घर में संप होती है, आपस में प्रेम होता है, तो लक्ष्मी आती है वहां पर। और लड़ाई होती है, आपस में खटपट होती है, तो लक्ष्मी रवाना हो जाती है। लड़ाई में कौन से भाई, किसी किसको अच्छी लगे। तो धन बढ़ा तो खूब शेर ने कभी आजकल क्या बात है, मां से मुनाफा बहुत अधिक हो रहा है। जिस व्यापार में जाओ, जिस तरफ जाओ, उस तरफ ही धन धन पैदा हो रहा है। तो सेठ ने कहा कि इतना पैसा हो गया तो स्त्रियों को देना चाहिए। स्त्रियों के जो गहने होते हैं वो केवल श्रृंगार के लिए नहीं होते हैं, वो स्त्री धन कहलाता है। स्त्री के गहना चाहे बाप गाल दे चाहे ससुर गाल दे, कोई भी ससुर देता है वो भी वैभव का, और बाप दे वो बेटी का है ही। जो तरफ धन दिया जाता है तो वो स्त्री धन कहलाता है। शास्त्र की रीति से स्त्री धन के ऊपर पति का भी अधिकार नहीं, ससुर का अधिकार नहीं, किसी का अधिकार नहीं। वो मालिक है, वो दे तो दे सकती है, नहीं तो स्त्रियों का धन है। तो साथ साथ आठ आठ कहनों की जोड़ी बना करके और रहे बहुत पोट भर करके नौकर का जा रहे, ये पांच पांच चार चार जोड़ी सब कमरा में रख दो, सब कमरे में रख दी। सब जितनी बहुआ थी उन्होंने कमरे में गहने आ गए। तो छोटकी बहू गए, चले गए सब, छोटकी बहू गहना लेकर बड़ी जेठानी की यहाँ पहुंची। जाकर कहा ये गहना तो आप रखो, मेरे गहना बहुत है, पिताजी ने दिया तिजोरी भरी है, मैं पहली दे सकू, इतना गहना मैं क्या करूंगी, ये तो आप ले लो। क्या हमारे को भी दिया है? तेरे को नहीं दिया, छोटी से उसे तेरे को दिया नहीं, हमारे को भी दिया है, भेजा है सबके तो भेजा है, पर मैं क्या करूं अकेली। आपके लड़का है लड़की है, ब्याह करोगे, बहू आवेगी, उनके गहना चाहिए, मेरे कुल पर मैं देखे ली हूँ, मुझे बहुत गहना है, आप लो। सब जेठानी और घर में दिया ही सब। सास ने देखा कि ये क्या कर रही हो तुम, कि क्यों गहना क्यों देती हो, तो आप दान पुण्य क्यों करते हैं, दान पुण्य का पाप होता है, पुण्य होता है, तो क्या जेठाने को देने से पाप होगा? अरे पाप नहीं, पर तेरे ससुर ने सबको दिया है, फिर तू क्यों देती है? कि ससुर ने दिया सबको, उनको पुण्य होगा, मैं दूंगा मेरे को पुण्य होगा। सासी भी बात तो बढ़िया कहती है, बड़ी समझदारी की बात। तो शेष ने साड़ियां दे दी, ऐसे कपड़े लगा कर दिया, कपड़ा दिया तो पहले बात जो शिक्षण ने कहा था आप ही तरफ से गहना दिया, मैं गहना दूंगी मेरे बुकों को मैं दूंगा, हाँ आप दो बड़ी अच्छी बात है। शेष ने देखा कि बात क्या हो गई, पहले बुकों को गहना कपड़ा देते तो लड़ाई करते, कहते क्यों दो, क्या काम के इतनी जरूरत है, इतना गहना क्यों खर्च करते हो, इतना रुपया इतना गहने के इतने कपड़े की जरूरत क्या है। अब ये कहती है तो सेठ बड़ा राजी हुआ कि जी यार सेठानी की तो बुद्धि बदल गई, ये तो बात शुद्ध हो गई। अब महाराज भी समझे हुए गहना ला दे, कपड़ा आ जाए, जो आ जाए जो तो जाकर जेठानियों को दे। अब वो कमरे उसमें पट गए, वो हजार उसमें पट गए, अब गहना ज्यादा हो गया, कपड़ा ज्यादा हो गया, चीजों में ज्यादा हो गई, काम धंधा तो हो गया कम थी, और चीज वस्तु की ज्यादा रुपये हो गया ज्यादा, उधर पैदा हो गया पुण्य प्रेम होने के कारण से व्यापार में बड़ी पैदा हो गई, घर बड़ा ऐसा रहने लगा। और उनके प्रेम की बातें सुनी लोगों ने कि ऐसी बहुआ आपस में प्रेम करती है, सासु बूढ़ी होकर काम करती है, और बहुआ छीन छीना चपटी करती है कि मैं करूंगी, वो कहते मैं करूंगी, तो लोगों पर असर पड़ा। लोगों ने कहा भाई इस घर का तो अन्न मिल जाए तो भी अच्छा है, तो कई लोग आते पानी पीने के लिए कि भाई पानी पियो, संत महात्माओं ने सुना उन्हें प्रेम अच्छा है, तो संत लोग कहते भी चलो भिक्षा वहां की लेंगे जिस घर में ज्यादा प्रेम हो। एक संत से पूछा था किसी ने कि महाराज भोजन बढ़िया कौन सा, बढ़िया भोजन कौन सा है, तो क्या बढ़िया भोजन वो है भोजन कराने वाले को करने वाले की अपेक्षा ज्यादा आनंद आवे, वो भोजन बढ़िया होता है, और करने वाले के भोजन करने वाले को आनंद खुशी ज्यादा आवे वो नीचा भोजन होता है, ऊंचा भोजन तो वो है जो कराने वाले को आनंद ज्यादा आवे। अब उत्साह से भोजन कराते हैं तो उसे करने वाले का आनंद आता है, तो भोजन बहुत पवित्र होता है, ऊंचे दर्जे का भोजन होता है। अरे वो दुख पाती है आया पावना घर पर आ गया, अब व्यापारी है व्यापारियों के तो कई व्यापारी रहते हैं ना, व्यापार सुबह आ जाए दोपहर में आ जाए, भोजन करना है घर में जाकर के भाई व्यापारी आए हैं तो साधारण घर में कहते दिन भर रात भर सुबह से लेकर 12 बजे तक तो चूल्हा जलाया, अब फिर चूल्हा से जलो हो गए दिन भर ही, तो महाराज बड़े मन में दुख हो बना, कह दिया घर वालों ने क्या करे, तो वो इधर तो चूल्हा जलाए इधर खून जलाए इधर ईशा बोले, अब करें क्या, अरे वो रोटी बोले रोटी बोले इधर साग बोले बड़े ही बोले ईशा बोले तो बोलते शांति कैसे हो। और इस घर में कोई कह देता उत्साह है उसको मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा ऐसे, तो उस घर में वो बहुत पवित्र हो गया, संत महात्मा भी गए भाई वहां उन घर की भिक्षा लेने अपन, उस घर का अन्न बड़ा पवित्र है निर्मल करने वाला अंतर्मन शुद्ध होगा, ऐसे उन घर का अन्न जल भी पवित्र हो गया। कुटुंब में बाहर बातें फैली तो विचार किया कि अपने कोई छोरी लानी है तो उस घर की लानी जिसमें ऐसा प्रेम है उस घर की जाओ जिससे अपने भी घरों में प्रेम हो जाए, और घर में देरानी जेठानी लड़े ननद और भुजाई लड़े सासू और बहू लड़े आपस में, उस घर की लड़ाई छोरी लाओगे तो आग की चिंगारी यहाँ आग लगा देगी फिर बस छोरी, क्योंकि उसने ऐसी लड़ाई देगी अपने घर में लड़ाई हो जाएगी, तो वो घर की छोरी अपना नहीं लानी अपने छोरी लानी, तो सगबन भी बहुत अच्छा अच्छा आने लगा, लड़कियां अच्छे अच्छे घर आने की बहु आने लगी, और अपने घर की लड़कियां जगह दूसरे थे उनमें ठीक हुआ, तो जाति में एक आनंद हो गया शांति हो गई, भाई ये विद्या बड़ी अच्छी है, राजो करने से बढ़िया काम होता है, संसार में जश होता है प्रतिष्ठा होती है, धन भी बढ़ता है मन भी बढ़ता है सबका ठीक तरह से, और आपस में बड़ा प्रेम बढ़ता है, मैं करूं काम करने में प्रेम बढ़ता है, चीज बचता है मैं लू मर लू मैं उस चीज नष्ट हो जाती है। एक जगह है बात सुनी कि एक बारात जा रही थी पढ़ने चढ़ने के लिए, बात गेंद को लेकर के एक स्टेशन आया बड़ा, तो उसे पता कि यहाँ जान आएगी तो 100 आदमी होंगे उसमें, तो उन्होंने साग पूरी और बनाया, अब साग पूरी बनाया कर लो सब्जी में भोजन करो, तो वो लेने लगे तो लेने लगे तो एक दो पूरी अधिक ले ली कि खा के भूखे नहीं रह जाओ, एक दो पूरी लगी 100 पूरी खर्चे 5-7 आदमी भूखे रह गए, और वो ही जान आई और भोजन गए। मेरे एक पूरी रह जाए कोई हर्ज नहीं, कमी रह जाए, दूसरे कमी नहीं पड़ जाए, दूसरे कमी नहीं हो जाए, तो 8-10 आदमी और जीम लिए। तो ये अपने रहने रहने से तो चीज नष्ट होती है और रहने रहने से त्याग करने से चीज बढ़ती है। जहां कहीं आप देखो त्याग होता है, उन साधुओं के चीजों की कमी नहीं रहती। वो कहते हैं हम देंगे, वो कहते हम देंगे, देने वालों के मन में आती है, देने वाले के मन में आती है तब चीज ज्यादा मिलती है कि लेने वाले के मन में आवे ज्यादा मिलती है। लेने वाले ज्यादा चोरों के डाकुओं के आती घड़ी मन में, कोई दान करता ही नहीं उनको, और रहने की मन में नहीं होती है। सब चाहते हैं उन संतों को देंगे थे, उन ब्राह्मणों को, उन पंडित जी को देंगे, वे मांगते नहीं। लोग निगाह रखते हैं किसी चीज की जरूरत हो जाए तो इनके घर में चीज भेजना है, कि ये मांगते नहीं, देने पर लेते नहीं, साधन से काम चलाते हैं, ऐसे सुपात्र है। सुपात्र रहना है तो भगवत धनाज्य धन प्रभाव करो जी पुण्यम, पुण्य प्रभाव स्वर्गम प्रयाति पुनर्धनाद्य पुनर्व भोगी। सुपात्र के दान देने से धन बढ़ता है और धन के प्रभाव से पुण्य बढ़ता है, क्योंकि उसका स्वभाव पुण्य करने का सुपात्र है, और पुण्य प्रभाव स्वर्ग सुगण जाता है, पुनर्धनाद्य पुनर्व भोगी, बार बार धनी बनता है। तो सुपात्र को दान देने से बड़ा अच्छा है। सुपात्र कौन? जो लेना नहीं चाहता वो सुपात्र होता है। कहते ये क्या बात है भाई, अन्न दिया जाए तो भूखे को दिया जाए उसका पुण्य होता है, जल पिलाया जाए तो प्यासे को पिलाने से पुण्य होता है। तो धन दिया वस्तु दी जाए जो चाहे उसको देनी चाहिए, भूखे को भोजन दो, प्यासे को जल पिलाओ, रोगी को औषध दो, ये ठीक है। परंतु वो नहीं चाहते उनको जाने से, कहते यही तो विचित्र बात है। दान पुण्य आदि न चाहने वालों को दो। ये चाहने वाले चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। कोई आपने शास्त्र में सुना कि चोरी करने वालों को दान दो साहब, ये डाका डाल वालों को दान दो, उनकी भूख ज्यादा है, रातों जगते हैं, लूट खसोट करते हैं, हत्या तक कर देते हैं, तो इसके धन की बहुत ज्यादा भूख है तो इनको दान दो, ऐसा दान देते है कोई? विधि नहीं है उनको देने की। देने की विधि तो उनको है जो त्यागी है, वास्तव में अपने भोगों के लिए कोई संग्रह नहीं, कोई विचार नहीं है। ऐसों को अन्न देना चाहिए, वस्त्र देना चाहिए, चीज वस्तु देना चाहिए, गौ दान है दान करना चाहिए, और अच्छे घराने में अपनी कन्या देनी चाहिए, जिससे हमारी पुत्री सुख पाए अच्छे घर में, और जिसमें घर में करे उसमें छोरी नहीं रहेंगे, उन घर की छोरी भी नहीं रहेंगे, वो लड़ाई लगा दीजिए आग लग जाएगी हमारे घर में। तो अच्छा बर्ताव कैसे होता है, जैसे आपको मैंने कहानी सुनाई। तो अपने काम धंधा तो आप करें, मान बधाई दूसरों को दे, आदर सत्कार दूसरों को दे, आराम दूसरों को दे, आप आराम करो, काम मैं करूंगी। पर स्त्रियों में ईर्ष्या बहुत होती है। ये भाई भाई तो साथ में जा रहे हैं गाड़ी में, अलग अलग है परंतु साथ में है, तो एक ने ले लिया, दूसरे पा लिया, कभी उसने ले लिया, परवाह नहीं। और घराने में रसोई बनाने जाते, एक पढ़ाने वाले अध्यापक थे, पीपड़ की बात है, तो वो बोले कि यहाँ पर ये रसोई हमारे लिए भेजते हैं, पढ़ाने अध्यापक थे ना, जैनियों को साधुओं को पढ़ाते थे, तो भेजते तो कई तरह के सागर, कई तरह की चीजें बहुत अच्छी अच्छी वो भेजते हैं, पर कटोरी लोह की कटोरी, सिल्वर की कटोरी, वो अगर एक चली जाए तो लड़ाई हो जाए, गोदू हो जाए आपसे, हमारी कटोरी चली गई। तो वो उन्होंने काफी पाड़ की बात है कि देखो जिसमें कितना घी होता है, कितने पदार्थ होते हैं, ये पांच दो चार पांच पैसों की चीज, पर इनमें लुगाई लड़ पड़ती है, तो लुगाइयों के ये बर्तन बासन बहुत अच्छा लगे, तो अपने घर में ला करके रख दो, अपने घर पैसों से वो सदा घर वाला बरतो, तो अपनी थाली बरतते नहीं, हाथी में थाली आ जाए तो उस थाली में भोजन करेंगे, क्योंकि हमारी थाली नहीं घर से, दूसरे का लोटा आ जाए तो उसको काम मिले, गलास उनकी काम मिले, हमारी क्यों घसे हमारी, ये कर दो अपने काम तो सदा नहीं है, इस तरह से लोग करें। तो तुच्छ चीजों के लिए मंगतापना होता है, क्यों होता है कि हमारी चीज अच्छी हमारी, अरे थारी चीज दूसरे काम आ जाए वो बढ़िया है, तुम संस्कार रखो बड़ी बड़ी क्या काम आ जाएगी, मर जाओगे यही रह जाएगी सभी, तो इन कामों के द्वारा सबका हित करो, सबका कल्याण करो, सबका उद्धार करो, सबको आराम दो, सबको आदर दो, सबकी प्रशंसा करो, तो आपस में प्रेम बढ़ेगा, तो लोक में ठीक होगा, और परलोक भी सुधार, भगवान भी राजी होंगे, संत महात्मा सुनेंगे तो राजी होंगे, संपत्ति भी आवेगी। आवे ना आवे, अपना काम होगा, अपना स्वभाव तो शुद्ध होगा। कोई नौकरी करता है, उस नौकरी में काम ठीक तरह से करता है, तो नौकरी विषय मालिक नौकरी से निकाल तो सकता है, परंतु उसने काम सीख लिया है वो तो मालिक के काम है, वो तो साथ में रहेगा, जा जाएगा ठीक होगा। ऐसे स्वभाव जिसने शुद्ध बना लिया, जिस समुदाय में जावा उसी समुदाय में उसका आदर हो जाएगा कि भाई अच्छे हैं, तो स्वभाव बड़ा अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छे हैं, सबको ही अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगता है? काम धंधा तो करता है और खर्चा कम करता है, अपने शरीर के लिए ज्यादा नहीं, दान में पुण्य में उपकार में गरीबों को अपाहिजों को और पूजनीय आदरणीय बूढ़े बड़ों को आदर से देखता है, उनकी सेवा करता है, तो सब लोग प्रशंसा करते हैं, तो लोग भी सुधर जाते हैं और परलोक भी। तो गृहस्थ में रहते हुए आप गृहस्थ का काम ठीक करो, ठीक हो जाता है और परलोक सुधर जाता है, भगवान उन पर राजी होते हैं। कोई बीमार हो जाए तो बीमार की सेवा करो, घर में देखो, एक तो बीमार की सेवा करो, एक किसी के बालक हो जाए तो उस स्त्री की सेवा करो, एक छोटी बहू आई है तो उसका लाड़ प्यार ज्यादा करो, महाराज छोटी बहू आई है उसका पति भोजन करेगा तब करेगी वो, तो स्वर्ग पहले जिमाओ, तू जिम ले, और बीनी को जिमाना है उसको पहले जिमाओ, ऐसा लाज रखोगे तो वो बहू बड़ी राजी होगी, वो समझती है मेरी माँ वहाँ नहीं रही, यहाँ भी मेरी माँ ही है, ऐसा प्यार होगा। और बड़ी हो जाओगी तो वो सेवा करेगी कि मेरा बचपन में कितना लाड रखा सासू ने, तो सासू की सेवा करेगी, और जो काम नहीं करती है और सासू उसे लाड प्यार नहीं रखती है, देवन जैसा उसमें खटपट करती है, तो ये माइयां समझती नहीं है, अपना काम बिगाड़ देती है। ये क्या करती है? एक बड़ी भारी भूल बताऊं, बड़ी विचित्र भूल। छोटे छोरा छोरी होते हैं तब तो छोरे का लाड ज्यादा करे, छोरी का नहीं करते। श्री जयदया जी सुनाया करते, एक पूर्व में दूर देश की छोरी आ गई, बहू आ गई। अब बहू आ गई तो वो बालकों को खिलावे, अपने जेठानियों के सासू के बालक उनका खिलावे, वो तो खिलावे तो बाई है उसको खिलाया, तो वे बोलती है भाई तू मंडो सवेगी आख सवेगी, वैसे मंडो सवे आख सी समझती को नहीं, पूर्व की हुआ जो वही अपने जबरानी को लड़का था उसको गोदी में लिया, कमल जी आप आख सवोगे ससुर बिगड़ी आख सवे सारो बाप के, कैसे बोलती हूँ तो आप सन क्या हुआ, मैं समझी को नहीं आख सवेगी मंडो सवेगी, आग सनद ये है कि तेने आकड़े नीचे गाड़ा अथवा ब्याह करो, तेरह मोडो सनो तो ब्याह कर लो, आग सनो आकड़े नीचे गाड़ देनी मेरी छोरी ने, क्योंकि सूर्यन मारो, सूर्यन पक्षपात करो, सूर्यन मारो जो ठीक हो जाएगी। तो वे कहते ए लाड आप करते हैं, तो समझते नहीं, ए लाड तो भाईरा है, भाईरा नहीं है लाड, लाड कहने में भाई रहा भाई लाड नहीं रहा भाई रहा, छोटी अवस्था में ऐसा करे। मैंने खुद ने देखा है मामूली घर में जिसमें छोरी के कपड़ा जो कई टुकड़ा साथ करके ऐसा बनाया हुआ है, छोरे का नया नया कपड़ा बनाया हुआ, बीमार हो जाए छोरा तो पति को कहा जी छोरा बीमार हो गया, कल गया परसों हो गया, तो तीन दिन में कहा नहीं छोरे को, अरे जोर भाग लगी बाहर वैद्य को बुलाओ, उसको बुलाओ छोरा बीमार हो गया है, एक बड़ी सारी छोरी है वो बेमी हो जाए, कभी छोरी बीमार हो गई है वो क्या बिगड़े डांड गो क्या बिगड़े, इसका क्या बिगड़ता है छोरी का तो क्या बिगड़े, मेरे साहब छोरे के जो राखड़िया की मदलिया बना गायब घसरा सोरी भी नगी पर रही हुई कोई है ही नहीं। क्या ये क्या बात है, लड़के के इतना से राखड़ी करा दी वो गायब घर दिया सोरी गए। सोरी जी तो राम जी रक्षा करे, राम जी सोरी सोरी जी करे, सोरे करे ही नहीं है राम जी रक्षा करे। पार्वती के सोरे हमारे कमार गलेगा, सोरी गर्म में हो तो पार्वती को संघास करो, ऐसी दशा सोरे को करे। जब बड़ी हो जाए ब्याह कर दे और घर में बहु आ जाए दो तीन, वह भक्त में छाने छाने चीज भेजे बेटी के, चावल भेजे, दाल भेजे, पापड़ भेजे, मुंगोड़ी भेजे, बड़ी भेजे, साग भेजे, कहीं वो जो भाई ऐसे हो गए और वो लगे उसको बहू को बुरा लगे, मेरा घर खराब कर रही, नंद खा गई मेरे घर का अंक धन की, तो उस चीजा मिले वो लड़ाई बजो खटपट करे कि थोड़ी सी बहू की लड़ाई में थोड़ी बात में लड़ाई करे, थोड़ी सी बीच बीच बड़ी बड़ी बातें पड़ी अभी क्या क्या विचार। सासू जी जो को बेटी ने बेटी ने पक्ष बात करे, अब बेटी ने छान छाने भेजे, तो अब बेटी के भेजने की क्या जरूरत है, अब तो छोटी जन सेवा करने की जरूरत है, अब तो वहां घर की मालकिन बनी है। कहो माँ जी सेल्स के क्यों भेजो, कि महाराज हूँ जी हूँ जी से भेजू, बस कौन रही बाप रही सोरी खुद बस चलिए मैं जी हूँ जी से दू तो क्यों बोझे नहीं, तेने खराब बिगाड़ दिया, बहुओं का स्वभाव बिगाड़ दिया, नहीं तो बहुओं के द्वारा जराती कि तारी धन को दो, देखो भेज नहीं अपने धन से तुम्हारी ये धर्म की मूर्ति है, जैसे ब्राह्मणों को दान देवे इस जैसे नंद ने अपनी भुआ ने आना जानो बड़ो भारी पुण्य है, तो उम्र भरी उसको दान मिलता छिपा छिपा देवा है तो बहू का मन तो भाग जाएगा, फिर कैसे रहेगी ये, तो बेअकल के कारण से घर में बिगाड़ कर रही हो आप, तो अकल के द्वारा काम करो ठीक तरह से, जब स्नेह रहे धन को देवे अपने बुआ जी भाई इनको भेजो, ये तो सुहास नहीं है हमारे घर की इस वजह से भेजो। तो ऐसे घरों में उदारता का भाव रखो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, जिसमें लोग और परलोक दोनों सुधरे, जिसे ठीक हो जाए, तो ऐसे घरों में विचार करो, घरों में स्नेह बर्ताव करो। आज का कुछ घर की गृहस्थ की बात बताओ, तो गृहस्थ की बात बताओ, मैं बात बताने से नहीं होगा करने से होगा, सीख रहे बहुत सी बातों से क्या हुआ। ऐसे बहनों आप लोग घर में बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो, हमने पहले यहाँ चातुर्मास किया था उसकी बात मैंने सुनी, मगर लोगों से बात सुनी कि हमारे गांव में लड़ाई मिट गई, मथानिये में घरों में लड़ाई मिट गई, ऐसी बात मैंने सुनी, तुम्हारे भी सिद्ध प्रश्न हो गए। कई जगह मैं और जगह जा कहता हूँ भाई मथानी में चातुर्मास किया जिसकी बात सुनी घरों में लड़ाई मिट गई, तो आप घरों में लड़ाई मिटो शांति रहे सुख रहे आनंद रहेगा, अरे वो चीज कम नहीं होगी, जहाँ उदारता है वहाँ चीज बहुत आवेगी, भगवान की तरफ से आवेगी, कमजोशी कृपणता है वो दूसरों को बढ़ेगी नहीं चीज, तो कृपणता मत रखो उदारता रखो, आपस में प्रेम का बरसाओ। दो बात बताई, दो बात, काम धंधा तो आप करो, चीज वस्तु दूसरे को दो, इतनी तो बात है, लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, तो कितना काम ठीक हो जाए। और मैं बताऊं ज्यादा ज्यादा आप जानती हो, आपके काम पड़ता है, मैं तो सुनी हुई बात है कुछ पढ़ी हुई बात है वो कह देता हूँ, परंतु ज्ञान तो आपको ज्यादा है, पर वो ज्ञान वो काम में लाओ, पर स्वार्थ में काम आता नहीं, अपना स्वार्थ होना चाहिए, अपने पक्षपात होना चाहिए, तो छोरों के भी छोरियों के भी मन में असर पड़ता है अच्छाई का, तो अच्छा काम को इस तरह से अपना संभालो जिसमें लोग और परलोक दोनों सुधरे। और बोलो कोई बात, इस बातें मेरे पास और घनी है, कृष्ण की बातें और भी कई याद है, मैंने बहुत पढ़ी है बातें, बहुत सुनी है अच्छी अच्छी, कई कृष्णों की बातें मैंने सुनी है, मेरे से गृहस्थ लोग भी सलाह देते कि कैसे घर में काम करें, पति पत्नी आते हैं दोनों लोग सलाह देते मेरे से घर वाले कि कैसे करें, मैं बता रहा मन में आ जाए बता देता हूँ, लोग राजी हो जाते हैं। तो आप भी इस तरह से बरसाव करो, उदारता का बरसाव करो, परिश्रम करो, खट करके काम धंधा करो, कस करके जिसमें शरीर अच्छा रहेगा, प्रेम बढ़ेगा, लोगों में कीर्ति होगी, भगवान राजी होंगे। उदार भाव से भगवान राजी होते हैं। कंजूसी मत करो, उदार भाव रखो। भाइयों भाइयों में बंटवारा हुए, उनमें देने जिताने में वे नंद है और भोजाई है, उनमें भी प्रेम रहे। ये छोकरियां है महाराज जो प्रेम करा देती है, बैर करा देती है। ऐसे ऐसे घर हमने कई देखे हैं, कई जगह की ऐसी बात सुनी है। आप उसमें स्नेह रहे, ऐसा बताओ करो। नारायण नारायण नारायण। और कोई शंका हो तो वो पूछो, आपकी जो बरसाव निकलती होती हो। प्रेम का बरसाव करो, आदर का बरसाव करो। ये दो बातें ऐसी विलक्षण है, काम धंधा आप ले और चीज वस्तु और को दो, दूसरे के काम आ जाए, वो परलोक में जाने की तिजोरी में बंद हो गया। वो जो दान कर दिया, पुण्य कर दिया, दूसरों का हित कर दिया है, वो तो आपके जमा हो गया। अरे अपने खा लिया, घर मिट्टी हो गई। इन खेती करने वालों को पूछो, बढ़िया बढ़िया बीज होता है तो वो रेत में लगा देते तो खेती हो जाती है, अरे खा ले तो रेती हो जाती है। बाजरा है, इसका बढ़िया बढ़िया बीज होते। मिर्चों होती थी, मिर्चों का बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी मिर्चों लेकर उनका बीज लेकर के बातें ऐसी छोटी छोटी बीज उसका ले और बीज वो खेती बढ़िया नहीं है, पनपसी बढ़िया अच्छा होता है। तो ऐसे परलोक में आप सुख चाहो तो बढ़िया बढ़िया चीज दो। देते हैं परलोक में दान पुण्य मामूली चीज रखते हैं, ठाकुर जी पूजा विचार पूछते नारियल घास नहीं पूजा करते सुपारी पूजा नहीं पूजा भगवान पूजा अच्छा ठीक है। रद्दी देखकर पूजा नहीं देंगे, रद्दी देखकर नारियल देंगे, रद्दी देखकर दान पुण्य करना है तो आश्रम भी रद्दी देंगे। छाता भी ऐसा रद्दी बेचारा एक दिन ब्राह्मण साल तो बरसा हो तो कपड़ा काला हो जाए, कपड़ चले और वो खुद भी गए अच्छा लग रहा पर वो ऐसा रद्दी चीज देंगे। रद्दी तो खेत में बोले में रद्दी भी बढ़िया उगाया गया खेती चाहते हैं तो पुण्य ज्यादा हो और देने में रद्दी रद्दी चीज देंगे। कोई भिक्षुक आ जाए तो ठंडी रोटी दे, अरे ठंडी रोटी नहीं है तो क्या करे, फलकों ने नीचे है वो नीचे उतार कर दे जिसमें पिछली लगी हुई वो जो एक दो काम हो जाए, एक तो रोटी चला जाए एक मांगने वाले चला जाए, दो काम हो जाए आपस में जाए। ऐसी बातें स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य जगह जगह चला की स्वास्थ्य की बुद्धिमानी लगा दी केवल धन के संग्रह में, पदार्थों के संग्रह में, अपने भोगों में, अपने सुख के लिए, अपने संग्रह करने के लिए। तो यही बात बताई आज गीता में, यही बात आ रही है कि त्याग करो, दूसरे का हित करो, दूसरे के हित में तुम्हारा हित है, अपने हित में हित नहीं है। आपस में तो कुत्ते ही लड़े, अपना अपना हित करे, बड़ा प्रेम से खेले, रोटी लेते लड़ाई हो जाए तो कुत्तों को महिमा ज्यादा है क्या? इसलिए भाई लड़ाई करते लोग के वजह वो घर में कुत्ता लड़े जो लड़े कुत्ते की उपमा करते लड़ाई में तो वो तो मानना कैसा रहेगा बताओ? इसमें वो इज्जत रहेगी? इज्जत तो भाई त्याग में है, तो दूसरों को हित करने में है जिसमें लाभ ही लाभ हो। उदार सा रखो सबसे में सब चलते हुए, धन नष्ट नहीं होता है। दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचन के पिए सरोवर घटत नीर। चिड़िया कई पी जाए तो क्या सराई में काम कम हो जाएगा जा? और दान में तो विचित्र बात है, गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दानेन वर्धते नित्यम अदानेन विनश्यति। ये चीज देने से बढ़ती है। फूल है, फुलवारी लगी है, फूल लो तो रोजाना फूल लेते जाओ, दस दिन फूल नहीं रहेगा, दस दिन ग्यारह दिन सब फूल ले लेंगे, मिलेगा फूल रोजाना कितना हो जाएगा? कुएं का जल निकाल तो रोजाना वो तुम्हारा खेत का खेत मिल जाएगा। अब दो महीना पड़े रहने दो तो कुआ ऊपर तो भर जाएगा क्या? अरे उतना कुआ ही बन करके सींच कर भर दो, कुआ भर जाए इतना पानी रोजाना निकालो तो। ऐसे विद्या पढ़ाने से विद्या बढ़ती है, दान देने से धन बढ़ता है, विद्या पढ़ाने से बढ़ती है, और गाय को दूध, हम गाय का दूध भी अब दो दिन नहीं दू, तो तीसरे दिन दू लेंगे, सबके ऐसे भी मिल जाएगा। अरे दो बार दूओ ज्यादा हो, तीन बार दूओ तो तीन बार में दूध ज्यादा ही मिलेगा आपको। गाय को सूर्य रखो, अच्छी तरह से दूध दो, गोद गुरु बांट के आपको सब विद्या कु धनम धन भी दाने जो दान पुण्य करोगे तो धन बढ़ेगा। दीखता है घटता हुआ, मन घटता नहीं है, बढ़ता है। जैसे कुएं का पानी रोजाना निकालते रहो, रोजाना खेत को पिलाते रहो, कई कुआ भर जाए, इतना कुएं में पानी निकाल दिया, पर पड़ा रहने से कुएं पानी से ऊपर से नहीं आएगा पानी। इससे सबके साथ प्रेम का बरसाव, आदर का बरसाव, ऐसा सुधार करो, देखो घर में कितना सुधार हो जाए, कितनी शांति हो जाए, सुनने वाले राजी हो जाए, हम लोग राजी हो जाए। ऐसे लड़ाई करो आपस में, सत्संग करे आपस में, लड़ाई करे तो महाराज आपकी फजीती हमारी फजीती होगी। अगर जो क्या करे इतनी सत्संग करे झूठ सारे सत्संग में, तुम्हारी फजीती हुई फायदा क्या बताओ, झूठ सारे सत्संग क्या सारे लड़ाई तो वो करे झूठ भरे पड़े। यार अच्छा काम करो तो बड़ी अच्छी है, सा पर बहु बड़ी अच्छी आई है, अच्छे घर में भी है, दोनों पूछ रहे। महाराज जनक जी गए चित्रकूट तो सीता जी को देखा वनवास में, और वो आग पकड़ पड़ती है प्यार से, सिर पर हाथ लग के हृदय लगाए और ऐसे राजी हुए जनक जी। सीता जी को देख करके जितने अहंकार थे, अच्छे अच्छे अफसर जनक जी महाराज के साथ में राज किए थे, उनको दुख हुआ कि हमारी महाराज की राजपुत्री कितने प्यार से पड़ी, आज जंगल में बैठी है, रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, भोजन नहीं है, पहनने के लिए बढ़िया कपड़े नहीं है, हमारी राजपुत्री कितना दुख पा रही है। ऐसे भी लोग तो दुखी होते हैं, पर जनक जी महाराज ने पुत्री ने पवित्र किया कुल दो, बेटी ने दोनों कुल को उज्जवल कर दिया, हमारे कुल को भी दशरथ जी के कुल को भी तेरे पवित्र कर दिया, बेटी राजी। तो बेटी का मुंह नहीं था तो जनक महाराज ज्ञान ही थे, तो सीता जी बड़े खुशी हुई। मिलने में वही रात्रि में तो वह संकोच से कहती नहीं है, भाई मैं रात में यहाँ कैसे देखू, भगवान वनवास में बैठे, मैं दे जाऊ पीहर में। तो उनकी वो बात देख करके और रानी बहुत नैना जी बड़ी खुश होगी, हाँ बेटा अब समझाओ, ज्यादा रात आगे समझाओ। आपस में बातें करते हैं तो उसमें कहते हैं कौशल्या मैया कहती है कि भाई सुत बधु देव सरी बारी, हमारे से बेटा पोता गंगा जल को काम, गंगा जल नहीं है, लुगाया नहीं पाता गोस्वामी मरण आती सभी देव सरी बारी, बस बेटा है वो है गंगा जल है साक्षात, लुगाया नहीं भाषा भी बोलते है। ऐसा आपस में प्रेम रखो, रामायण सुनो, रामायण की या शिक्षा लो कि किस तरह से आपस में बर्ताव करना चाहिए। नारायण 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 नारायण।